लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत पेत्रुस के उत्तराधिकारियों के नामों के इतिहास पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं।
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
मैं आप सभी के लिए एक बड़ी खुशी की उद्घोषणा करता हूँ। हमें पोप मिल गए हैं, सर्वोच्च प्रतिष्ठित और परम आदरणीय प्रभु रॉबर्ट फ्रांसिस पोस्ट रोमन कलीसिया के कार्डिनल प्रीवोस्ट, जिन्होंने लियो 14वें नाम धारण किया है। कार्डिनल प्रोटोडीकन डोमिनिक मेंबर्ती ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित प्रतीक्षारत भीड़ के समक्ष नए पोप की घोषणा की। पोप लियो 14वें नाम ग्रहण कर अमेरिका के 69 वर्षीय रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, रोम के 267वें धर्माध्यक्ष और विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के नए परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा यह है कि पोप अपने बपतिस्मा नाम को बदलकर दूसरा नाम लेते हैं। पोप अक्सर सम्मान, प्रशंसा या पहचान के लिए अपने तत्काल या दूर के पूर्वाधिकारियों के नाम चुनते हैं ताकि निरंतरता को चिन्हित किया जा सके। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं हुआ है, खासकर ख्रिस्तीय धर्म की पहली शताब्दियों में, लेकिन नवाचार का पालन करने के लिए अलग अलग नाम भी चुने गए हैं। पोप के रूप में अपने धर्म वैधानिक चुनाव को स्वीकार करने के तुरंत बाद और अन्य दायित्वों को पूरा करने से पहले नए पोप का पहला कार्य है अपने नाम का चयन करना। यह नाम कार्डिनल प्रोटोडीकन द्वारा प्रसिद्ध सूत्र अबेमुस पापम के बाद घोषित किया जाता है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार यह नाम बपतिस्मा के नाम से अलग होता है। यह चुनाव पहले पोप संत पेत्रुस द्वारा प्रस्तुत मिसाल का अनुसरण करता है, जिनका जन्म का नाम था साइमन। यह प्रथा ख्रिस्त धर्म की पहली शताब्दी में ही उभरी थी, जिसका अर्थ था कि परम धर्म पीठ के लिए चुनाव दूसरे जन्म के समान है। ख्रिस्त धर्म की शुरुआती शताब्दियों में कई संत पापाओं ने अपने नाम बदले क्योंकि उनके मूल नाम मूर्ति पूजक मूल के थे। हालांकि सभी संत पापाओं ने इस प्रथा का पालन नहीं किया। इतिहास में 267 संत पापाओं में से केवल 130 ने ही नया नाम चुना। यह परंपरा पोप जॉन 12वें के साथ 955 में शुरू हुई और एड्रियन 6वें और मार्सेलस द्वितीय के अपवादों के साथ आज भी जारी है। कुछ संत पापाओं के लिए नया नाम वास्तव में उनके जीवन का तीसरा नाम था क्योंकि वे धर्म संघी थे। नाम चुनने के पीछे क्या कारण है? नाम चुनने के मामले में कई लोग अक्सर अपने तत्काल या हाल के पूर्वाधिकारी का नाम सम्मान, प्रशंसा या पहचान के कारण चुनते हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चलने और सबसे प्रासंगिक धर्म गुरुओं के पद को जारी रखने की इच्छा का भी संकेत देता है। कुछ लोग अपने पूर्वाधिकारी से अलग नाम चुनते हैं, जो कभी कभी नवाचार और परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसके सटीक उदाहरण है पोप फ्रांसिस, जो इतिहास में असीसी के संत का नाम लेने वाले पहले पोप बने। सबसे प्रसिद्ध नाम जॉन ग्रेगोरी बेनेडिक्ट और पियूस रहा है। संत पापा बनने के इतिहास में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नाम जॉन है, जिससे पहली बार 523 में संत पापा जॉन प्रथम पोप और शहीद द्वारा चुना गया था, और इस नाम को चुनने वाले अंतिम पोप थे अंजेलो जुसेपे रोंकोली, जिन्हें 1958 में पोप जॉन 23वां चुना गया और जिन्हें 2014 में पोप फ्रांसिस ने संत घोषित किया। दूसरे अधिक प्रयुक्त नामों में ग्रेगोरी शामिल है, जो पोप ग्रेगोरी प्रथम के सम्मान में है, जिन्हें संत ग्रेगोरी महान भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग अंतिम बार ग्रेगोरी 16वें ने 1831 में किया था, तथा बेनेडिक्ट जिसे 16 बार चुना गया है, जिसमें 2005 में जोसेफ रात्सिंगर ने भी लिया था। पोप बनने की परंपरा में अन्य आवर्ती नामों में क्लेमेंट, इनोसेंट, लियो और पियूस शामिल हैं। 1775 से 1958 तक 11 संत पापाओं में से 7 का नाम पियूस था। यूजेनियो पचेली ने पियूस 12वां नाम इसलिए लिया क्योंकि वे पियूस 11वें के दूर के रिश्तेदार थे और पियूस 10वें के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते थे, जिन्हें 1954 में संत घोषित किया गया। संत पापाओं द्वारा कभी नहीं चुने गए नामों में जोसेफ, जेम्स, एंड्रू और लूकस शामिल हैं। वहीं किसी भी पोप ने पेत्रुस नाम यानी प्रथम पोप के प्रति श्रद्धा के कारण नहीं चुना है। हालांकि 6 संत पापाओं ने प्रेरित पौलुस का नाम लिया है, जिनमें पोप मोंतिनी भी शामिल हैं, जिनकी पसंद उनके पोप पद के प्रमुख पहलुओं में से एक को दर्शाती है। 2 नाम अपनाने वाले पहले पोप 1978 में अल्बिनो लुसियानी थे, जो जॉन 23वें और पोप पॉल 6वें के पोप पदों के साथ निरंतरता पर जोर देते हैं। उनके उत्तराधिकारी कारोल वैतिल ने जॉन पॉल द्वितीय के रूप में इस विकल्प को दोहराया। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने 27 अप्रैल 2005 को अपने प्रथम आम दर्शन में स्पष्ट किया था कि उन्होंने बेनेडिक्ट नाम का चयन प्रतीकात्मक रूप से पोप बेनेडिक्ट 15वें से जुड़ने के लिए किया था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अशांत काल के दौरान कलीसिया का नेतृत्व किया। साथ ही पश्चिमी मठवास के प्राधिधर्मदर्श और यूरोप के सह संरक्षक के नर्सिया के संत बेनेडिक्ट की असाधारण छवि से जुड़ने के लिए किया था। हमारे नए पोप ने अपना नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट से बदलकर लियो 14वां रखा है। लियो नाम जिसका अर्थ लैटिन में शेर है, शक्ति, साहस और अधिकार का संकेत देता है। लियो नाम वाले कई उल्लेखनीय संत पापाओं ने इस नाम की लोकप्रियता बढ़ाई है। पोप लियो प्रथम, पोप लियो तृतीय और पोप लियो 13वें। पोप लियो 13वें अक्सर अपने बौद्धिक नेतृत्व और सामाजिक धर्म शिक्षा के लिए याद किए जाते हैं। वे 1891 के विश्व पत्र रेरुम नोआरुम के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने आधुनिक कैथोलिक धर्म सामाजिक शिक्षा की नींव रखी। रेरुम नोआरुम में श्रमिकों के अधिकारों की भी बात की गई है। पोप लियो 13वें को पारंपरिक और आधुनिक कैथोलिक धर्म के बीच एक सेतु माना जाता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत पेत्रुस के उत्तराधिकारियों के नामों के इतिहास पर एक चर्चा सुन रहे थे, और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका सृष्टि। श्रोताओं, पवित्र बाइबल के पुराने विधान के पहले ग्रंथ यानी उत्पत्ति ग्रंथ के पहले और दूसरे अध्याय में हम विश्व और मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जल थल नभ की रचना करने के बाद पृथ्वी के जीव जंतुओं और समुद्र की मछलियों, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के पक्षियों की रचना की और अंत में ईश्वर ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसे अकेला नहीं रखा, उस मनुष्य के लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाया। ईश्वर ने मनुष्य के जीने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की रचना करने के बाद ही मनुष्य को अपने हाथों से गढ़ा और सारी सृष्टि को मनुष्य के हवाले कर दिया। ईश्वर ने यह कहकर आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, सब जीव जंतुओं पर शासन करो। श्रोताओं, मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा। अगर हम सृष्टि की रचना पर मनन चिंतन करें तो स्वतः सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और हमारे हृदय से धन्यवाद के गीत फूट पड़ेंगे। तो आइए सुनते हैं सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका सृष्टि।
वंदे सच्चिदानंदम, वंदे वंदे सच्चिदानंदम, वंदे।
ईश्वर प्रेम है, समस्त सृष्टि ईश्वर के प्रेम का प्रतिफल है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरती थी। ईश्वर ने अपने वचनों से सब सृष्ट वस्तुओं की सृष्टि की।
प्रकाश हो जाए, आकाश के नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े। दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में नक्षत्र हो।
ईश्वर ने दिन को रोशन करने के लिए चमकदार सूर्य बनाया।
रात्रि को मध्यम और जगमगाती रोशनी देने के लिए चांद तारों की रचना की।
पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फल लावे, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पक्षी विचरण करें। पृथ्वी नाना प्रकार के जीव जंतुओं को पैदा करे। मैं इस सृष्टि पर अपने प्रतिरूप मानव की रचना करूंगा, जो समस्त सृष्टि पर शासन करे।
तब परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी लेकर उससे मानव की रचना की और उसकी नाक की छिद्रों में जीवन देने वाली प्राण वायु फूंक दी, जिससे वह जीवित मनुष्य बन गया।
इस धरती पर मनुष्य के लिए अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा।
अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, फादर मानवेल और सिरिल चमरे। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।